तो एक एक उनके सर पे शीश पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, और कैसे पद लालित्य के साथ में कर रहे हैं, विद ग्रेट ग्रेस, बहुत सुंदरता से नृत्य कर रहे हैं। अभी पता चला आपको ऐसा अद्भुत नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गोपियों को उन्होंने वादा किया था ना, मैं दिखाऊंगा आपको अद्भुत नृत्य जो आपने नहीं सिखाया मुझे, मेरा खुद का होगा वो। तो हम लोग आमतौर पे ना ऐसे स्थिर भूमि पर नाच करते हैं, स्टेज होता है ना स्थिर, वो भी अगर हिलता है तो बोलते हैं स्टेज को फिक्स बनाओ, जरा फर्म होना चाहिए, नाच कैसे करेंगे उसके ऊपर, फर्म स्टेज होना चाहिए। तो ये नृत्य दुनिया का ऐसा अनोखा नृत्य है जो किसी भी स्थिर, क्या कहते हैं उसको, पृष्ठभाग पर नहीं हुआ है, नॉट ऑन द स्टडी प्लेटफॉर्म, वेरी अनस्टडी प्लेटफॉर्म, जिस जहाँ जहाँ पर कदम रखेंगे ना वो कदम ही झूम नीचे जा रहे हैं, जहाँ पर कदम डाल रहे हैं वो जगह ही नीचे जा रही है, तो कैसे नृत्य करेंगे आप। हाँ अभी इनके राधाष्टमी आ रहे नाच करते हैं, उनको बोलेंगे ऐसा आपको नाच करना है कि जहाँ पैर रखेंगे वो जमीन नीचे चल जाएगी, तो कैसे डांस करेंगे वो, कोई डांस नहीं कर सकता। कोई ब्रह्मा जी के पूरा निर्माण में ऐसा कोई डांस का शास्त्र नहीं है कि वो अस्थिर भूमि पर किया जाए। इसलिए वो कृष्ण है, परम भगवान ऐसा अद्भुत नृत्य करते हैं कि एक तरफ से डांस का सबसे सर्वश्रेष्ठ कौशल्य दिखा रहे हैं, इतना ग्रेसफुली दिखा रहे हैं, इतना कुशलता से कर रहे हैं, और एक तरह से किसी की जान जा रही है, वज्राघात हो रहा है उसके ऊपर। हाँ तो वज्राघात में कितनी बड़ी ध्वनि होनी चाहिए, धार धार होना चाहिए, तो ऐसे कोमल मक्खन की तरह कमल, कमल जैसे उनके चरण कमल जो है वो ऐसे उन पर सर पे गिर रहे हैं, इतने कोमल, इतने छोटे से। गोपियां रोती थी उनको देखकर, सोचकर रोती थी, देखकर नहीं, सोचकर कि अभी जंगल में जाते होंगे तो कैसे उनको कंकड़ लगते होंगे, ये सोचकर घर पे रोती थी वो, इतने उनके मक्खन जैसे कमल, चरण कमल हुआ करते थे। और वो कालिया पर गिर रहे, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, और वो कालिया पर वज्राघात मृत्यु आघात हो रहा है, और इतना सुंदर नृत्य हो रहा था ना, तो और एक सीन चल रहा है आकाश में, सारे देवता इकट्ठा हुए हैं, यक्ष लोक, किन्नर लोक, किम पुरुष लोक, गंधर्व लोक, हाँ गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, वाद्य, जितने जितने एक्सपर्ट देवता है, सभी देवता लोगों के एक्सपर्ट देवता लोग वहां पर विराजमान आ गए आकाश में, और वो तो सब एक्सपर्ट है ना कला में एकदम, कुछ नाचने में एक्सपर्ट है, कुछ बजाने में है, कुछ गाने में है, कुछ स्वर में है, कुछ वाद्य में है, तो सब अपना अपना लेके आ गए वो उधर। बोले ये जो अद्भुत नृत्य चल रहा है उसको हम साथ देंगे, तो कहते हैं कि आखिर तक वो सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार देवता इनका स्वर नहीं पकड़ सके, इनका ताल नहीं पकड़ सके, ता तक थई वो पकड़ ही नहीं सके, लेकिन वो अपना ही ताल तक थई नाचने लगे, ये यहाँ पर अलग नाच चल रहा है, वो अपना नाच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको बुलाने की, लेकिन मिल नहीं पाया सुर उनका, सुर ताल कुछ मिल नहीं पाया, कुछ कदम मिल नहीं पाए, लेकिन वो इतने आनंद में थे भगवान को नृत्य देखते हुए, देखते रह गए, इधर नृत्य होता रहा, एक एक फन जो है वो विष और आग से मुक्त होता रहा, और इसे पूरा ढीला हो गया, और भी कैसा था, अस्थिर तो था ही लेकिन फिसलन भी थी उसके अंदर। आपने कभी मेंढक को पकड़ा है, कभी किसी ने मेंढक को पकड़ा है 12th में, पूरा शरीर ऐसा जैसे लगता तेल लगाया हुआ होता ना पहलवान, कैसा होता है फिसल जाता है हाथ से, वैसे वैसे उसका मेंढक का शरीर होता है, सब चिकनाहट होती है पूरे शरीर में, कोई भी पकड़ा हुआ है वो फंस करके निकल जाएगा हाथ से आपके, वैसे वो कालिया के सब फन थे, फिसलन पहाड़ी थी पूरी, तो फिसलन भी थी, अस्थिर भी थी, उस पर भी नाच रहे हैं, कहीं भी कदम गलत नहीं गिरा उनका, इतना सुंदर नृत्य किया उन्होंने। फिर कालिया के सारे फन विष मुक्त हो गए, और जैसे विष मुक्त हो गए, टनाटन भरे हुए विष से मुक्त हो गए, तो एकदम नम्र हो गया वो, जितना दर्द हुआ उसको एक एक फनों से विष को मुक्त करने में, इतना कष्ट प्राप्त हुआ, इतनी वेदना पीड़ा प्राप्त हुई, कि उस वेदना के माध्यम से पूरा हृदय शुद्ध हो गया उसका, आत्मा पूरी शुद्ध हो गई, सारे द्वेष से भरा हुआ आत्मा जो थी वो पूरी द्वेष मुक्त हो गई। और जैसे ही आत्मा अपने विकारों से मुक्त होती है तो उसका मूल स्वरूप जो भगवान के भक्त का है वो प्रकट हो जाता है। भगवान तो जीव तो भगवान का नित्य भक्त है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भव नाम विदधाति कामान, नित्य रूप में हम सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन अभी आवरण चढ़ गए काम दुकाम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के, तो हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कोई राक्षस दिखाई पड़ता है, कोई दैत्य दिखाई पड़ता है, कोई दानव दिखाई पड़ता है, कोई भक्त दिखाई पड़ता है, कोई वैष्णव है, कोई श्रद्धालु, कोई अश्रद्धालु, कोई जीव, कोई मछली, कोई पंछी अपने अपने विकारों के अनुसार फिर शरीर धारण करते हैं, वैसा कार्य करते रहते हैं। तो जैसे कालिया नाग था, द्वेषी था बहुत, भगवान का बड़ा द्वेषी था वो, द्वेष से भगवान को डसने का कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन जैसे भगवान ने उसको रिक्त कर दिया द्वेष से, तो उसकी शुद्ध भक्तिमय जो स्थिति थी ना, मूल स्थिति, वो ऊपर आ गई और वो भगवान को शरणागत हो गया, मन ही मन शरणागत हो गया। लेकिन भगवान नाचे रहे थे, अभी उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, इतने वज्राघात सहन करने के बाद क्या होगा, मृत्यु होगी ना, और क्या होगा। तो उस समय उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां जो भगवान की परम भक्त थी, वो वहां पर ऐसे वर्णन आता है कि अपने नाग बालकों को सामने गोद में रखकर ऐसे भगवान के सामने आई, क्योंकि बालकों को देखकर हमेशा किसी को भी दया आती है ना, तो वो दया को आकर्षित करने के लिए अपने बालकों को सामने रख के पीछे पीछे पत्नियां चली गई और बहुत सुंदर गीत गाया उन्होंने, याचना का, प्रार्थना का, पति की रक्षा करने का, बहुत प्रेम से उन्होंने गीत गाए भगवान को विनती करते हुए। और भगवान ने जैसे ही उनकी प्रार्थना सुनी अपने पति को बचाने के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, कालिया को मारने से बचाया जाए, मरने से बचाया जाए, उसको वध करने का प्लान कैंसिल। तो एक भक्त ही हमें संकट से बचा सकता है, उसका ये भाग्य था, वो दुष्ट था ही वो, लेकिन फिर भी उसकी पत्नियां भगवान की भक्त थी इसलिए वो बच गया, नहीं तो उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। धेनुकासुर की भी हो गई, कंस की भी हो गई, सबकी हो गई, तो उसको कोई, वो कोई बड़ा कौन सा तीर था, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसको उसका संबंध उन पत्नियों से था जो भगवान की परम वैष्णव भक्त थी। इसलिए हमेशा भगवान से, भक्त से जुड़े रहो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गौरांग प्रभु है ना, वो उनके रिलेटिव्स एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने सुना था कि अपने परिवार में एक भक्त हो जाएगा ना तो सब लोगों को लाभ मिलता है उसका, चाहे परिवार के लोग भक्ति करें ना करें, लेकिन उनको उसका लाभ जरूर मिलता है। तो बोलते थे, उसका नाम गणेश है उनका शायद, ये गणेश जी आप अच्छी भक्ति करो, अच्छी भक्ति करते रहो। मतलब क्या, हम मजा करते रहेंगे, आप भक्ति करो, ताकि हम मजा करते रहने पर भी हमको लाभ होगा। और ये सच भी है, अगर एक व्यक्ति भी परिवार में शुद्ध भक्त बनता है ना, तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए कभी ना कभी किसी ना किसी भक्त के साथ में हमारा रिश्ता होना चाहिए, चाहे बहु के रूप में कोई भक्त घर में आ जाए, चाहे जमाई के रूप में भक्त आ जाए, चाहे पुत्र भक्त बन जाए। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद प्राप्त हुआ ना, तो वो बच गया ना, उसका उद्धार हुआ कि नहीं, भगवान ने उसका उद्धार किया, अपने हाथों से मुक्ति दिला दिया उसको। तो एक भक्त होने से कितनी इम्यूनिटी माया से प्राप्त हो जाती है। उसका भाग्य था, उसकी पत्नी भगवान की भक्त थी, तो उसने उसको मरने से बचा लिया। यहाँ तक कि केवल मृत्यु से बचाना कोई बड़ी कृपा नहीं होती है, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने भगवान की तरफ से उसको कृपा दिलवाया, उसको भक्त बनवाया और भक्ति दिलवाई उसको। तो कालिया, जो आज हम कालिया को देखते हैं ना, वो कालिया का वर्णन तो राक्षस के रूप में आता है, लेकिन आज जो कालिया है वो परम भक्त, परम वैष्णव है भगवान का। तो भगवान ने उसको फिजी आइलैंड में भेजा है, वो फिजी आइलैंड में कालिया का मंदिर जो केंद्र स्थान में फिजी में, और वहां पर उसकी पूजा होती है, राक्षस के रूप में नहीं होती है, एक वैष्णव भक्त के, संत के, महात्मा के रूप में उसकी पूजा होती है। तो एक द्वेषी, हाँ, ईर्ष्यालु, भयंकर राक्षस जीव को उन्होंने एक भक्त बनाकर परिवर्तित कर दिया, लेकिन पत्नियों के प्रार्थना के माध्यम से किया। तो मृत्यु से बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज नहीं तो कल मृत्यु आ जाएगी, उसमें क्या है, समय के अनुसार मृत्यु आने वाली, आज बच गए तो कल मर जाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन भक्ति मिलेगी तो मरने के बाद में फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो कृपा उन्होंने, पत्नियों ने अपने पति पर करवाई प्रार्थना के माध्यम से। तो फिर वो एक जन्म में जब भगवान ने लीला किया, तो कालिया को सीधे यहां से बोला, चले जाओ यहां से आप, और काली देह को साफ कर दो, शुद्ध कर दो, आप चले जाओ यहां से। तो काली अपने पत्नियों को लेकर चले गए। तो कहते हैं बीच में उसकी पत्नियां रुक गई इधर, उनको व्रत छोड़ के जाने का दिल नहीं था। तो बीच में एक जगह है यहाँ पर हाईवे पर, वहां पर उनकी पत्नियां बस चुकी, और फिर कुछ लोगों को लेकर कालिया आगे चला गया, क्योंकि उनको व्रत से बहुत प्रेम था, वो जाना नहीं चाहती थी व्रत छोड़कर। तो बीच में रुक गई, एक जगह है उधर। आजई नाम की एक जगह है। एनीवेज, तो फिर अगले एक अवतार में जब भगवान ने लीला किया तो कालिया को बताया कि आप ना पक्षी बन जाओ, पक्षी, और मुझे स्वर्ग लोक की सैर कराओ। तो फिर कालिया सर्प पक्षी बन गया और भगवान उसने उस पर अरूढ़ हो गए और भगवान को लेकर वो ब्रह्मा लोक तक सैर कराया उसने। सभी देवताओं ने हरी हरि बोल, हरि बोल, कृष्ण भगवान हरि बोल, सब दर्शन किया। सब देवताओं के आकाश में भगवान गए और भगवान ने दर्शन दिया, देवताओं को धन्य कर दिया, फिर लौट के आए पृथ्वी पर। फिर कालिया जो है वो चला गया फिजी आइलैंड पे। ऐसा लीला ही। तो तात्पर्य यह है कि कालिया नाग जो है ना वो द्वेष का प्रतीक है। षड विकार है ना, षड विकार, उसमें काम वासना का प्रतीक कौन है? काम वासना का कौन प्रतीक है? रावण, त्रिलोक विजयी रावण, वो काम वासना का प्रतीक है। तो वैसे द्वेष का प्रतीक कालिया है। और ये द्वेष जो है ना, उसके पहले एक बात बताता हूं मैं आपको, भूलने के पहले, कि काली दे जो था वो जल को विष से दूषित किया था उसने। तो भगवान ने कालिया दमन करके जल तत्व को शुद्ध किया। इस तरह से भगवान सबसे पहले पर्यावरणवादी भगवान है। उन्होंने तृणावर्त के वध करके वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। उन्होंने दावानल अग्नि को प्राशन करके अग्नि को शुद्ध कर दिया, अग्नि तत्व को, जल तत्व को कालिया दमन करके शुद्ध हुआ। और मृदभक्षण यानी मट्टी खाकर उन्होंने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। और व्योमासुर को मारकर अवकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। पंच महाभूत को सबसे पहले भगवान ने शुद्ध किया है। सबसे पहले पर्यावरणवादी स्वयं भगवान है। तो इस तरह से भगवान ने यहां पर जल तत्व को, यमुना जी को शुद्ध करके सबका जीवन जो है वो अच्छी तरह से स्थापित कर दिया। तो आचार्य बताते हैं कि ये द्वेष जो है वो हमारे जीवन के, भौतिक जीवन के दुखों का मूल कारण है, भौतिक जीवन का कारण है। भौतिक जीवन को प्राप्त होता है क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते हैं। आप लोग बोलेंगे भगवान के भक्त हैं हम लोग, जप करते हैं उनके नाम का, चार नियम पालन करते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे हम उनके द्वेषी हैं? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जिस हद तक आज भक्त बनने के बाद भी हम लोग भोग लेना चाहते हैं, समझ में आया आपको? हम लोग सब भक्त हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भोग लेने की इच्छा है। चाहे शरीर का भोग हो, या चाहे पद का भोग हो, चाहे कुछ धन का भोग हो, अभी भी हम भोगना चाहते हैं, अभी भी मन में कहीं ना कहीं वो इच्छा है हमारी। जितने हद तक आपके और हमारे मन में अभी भी भोग करने की इच्छा है, उतने ही हद तक हम भगवान को द्वेष करते हैं, उतना ही हद तक भगवान का द्वेष है। क्योंकि वो सारे भोग जो है वो उनके लिए है, लेकिन उनके लिए जो भोग है वो हम अभी भी भोगना चाहते हैं, मतलब उनका अभी भी द्वेष कर रहे हैं, उनसे साथ कंपटीशन कर रहे हैं। वी आर द कंपटीटर्स ऑफ गॉड। जो भोग उनके लिए है, उनके लिए नियत किया गया, वो भोग हम उनकी उनसे छीन के खुद भोगना चाहते हैं। ऊपर से जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं उनको प्राप्त करना है, लेकिन मन में फिर भी अभी तक भोग लेने की इच्छा है। तो जितने हद तक हमारे मन में भोग लेने की अभी तक इच्छा है, उतने हद तक हम भगवान के द्वेषी हैं, चाहे तिलक लगा के, धोती कुर्ता लगा के घूम रहे हैं। तो ये द्वेष ही हमको वहां से लेकर यहां पटका दिया उसने, और यहां पटका के बाद में शरीर धारण करवाया है। शरीर धारण करवा के बाद में तीन गुणों पर बद्ध करवाया है। तीन गुणों में बद्ध करवा के कर्म करने पर मजबूर किया है। कर्म करने के बाद कर्म फल में बांध दिया है, और कर्म करते हुए, कर्म को भोगते हुए, फल को भोगते हुए तीन प्रकार के ताप में भी बांध दिया है। शरीर का ताप, मन का ताप, आत्मक्लेश, प्रकृति का क्लेश, अन्य जीवों का क्लेश, ये भी साथ में हो रहा है सब कुछ। ये सारा चक्र क्यों शुरू हुआ? इतना भयंकर चक्र क्यों शुरू हुआ? क्योंकि शुरुआत में हमने भगवान से द्वेष किया कि आप क्यों, मैं क्यों नहीं, आप ही क्यों, आपकी पूजा क्यों हो रही है, मेरी भी होनी चाहिए, आप में से क्या बात है कि आपकी पूजा सब लोग कर रहे हैं, सब आपके पीछे भाग रहे हैं, सब आप ही आप कर रहे हैं, आपका ही गौरव कर रहे हैं, मेरा भी गौरव होना चाहिए। जैसे ये भावना मन में आई, वहां से हम लोग नीचे आ गए, आध्यात्मिक शरीर नष्ट हो गया, भौतिक शरीर प्राप्त हो गया, पितृगुण, त्रिविध ताप, कर्मफल बंधन, जन्म मृत्यु श्रृंखला सब चालू हो गया वहां से। और ये द्वेष ऐसी एक चीज है कि इसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर काम है, हाँ, तो गोपियां भी बहुत कामी थी, भगवान के लिए बहुत चाहती थी भगवान को, लेकिन वो भगवान के लिए उन्होंने अर्पित किया अपना काम, तो परिपूर्ण हो गई। क्रोध हनुमान जी के अंदर इतना क्रोध था, लेकिन क्रोध राम जी की सेवा में लगाया, लंका को जला दिया, तो क्रोध से वो पवित्र हो गए, क्रोध से वो नुकसान नहीं हुआ उनका। हुआ क्रोध करने से, अपने लिए क्रोध करने से आध्यात्मिक उन्नति जल जाती है, जलकर भस्म हो जाती है। यू बर्न योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बाय एंगर। तो लोभ ऐसा है, मोह ऐसा है, जैसे यशोदा मैया को भी मोह हो गया था ना, अरे मेरा बालक देखो मर जाएगा, वो मट्टी खाएगा, तो ये मोह थी, मोह ही तो है, और क्या है, भगवान कैसे मर सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा दिव्य मोह है कि वो सोच रहे कि ये मेरा बालक है, अरे ये मक्खन खा के चोरी करता है, दंड देना चाहिए, मट्टी खाएगा तो मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसे सोच रही हो, मेरे बालक को मुझे संस्कार देने चाहिए, भगवान को संस्कार क्या दे सकते कौन। तो एक प्रकार का मोह है, लेकिन वो मोह जो है वो भगवान के संबंध में है, इसलिए वो नुकसान नहीं करता है, लाभ ही लाभ है उसका। तो इस प्रकार के सारे प्रकार के विकार जो है ना, छह विकार में से पांच विकार भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन द्वेष को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, द्वेष को नष्ट ही करना पड़ेगा, और द्वेष को नष्ट करना कोई खेल नहीं है, कोई साधना ऐसी नहीं है जो द्वेष को नष्ट कर सकती है, केवल भगवान ही द्वेष को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवान नाचे उसको, और कोई नाच नहीं सका, कोई नर्तक आके कला दिखा नहीं सका, जो नाचते नाचते खेल खेल में उसके सारे विष को नष्ट कर सके, खेल खेल में, हाँ, लीलया ऐसे कहते हैं उसको, लीला के माध्यम से भगवान ने उनको द्वेष से मुक्त करवाया। तो हमें अगर हमारे अंदर का द्वेष नष्ट करना है, तो इसी जगह पर बैठकर कालिया पर चढ़े हुए कालिया मर्दन भगवान को प्रार्थना करनी होगी, हे भगवान हमें उस द्वेष से आप नष्ट कराओ। हम जानते हैं कि जब ये द्वेष हमको छोड़ता है, छूटता है, तब बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे कालिया ने मरणांतिक यातना का अनुभव किया, जब भगवान एक एक कदम डालकर उसके विष को बाहर निकाल रहे थे, तो कष्ट होगा, लेकिन हमको मंजूर है कष्ट। वो आप हमारा द्वेष निकाल दीजिए एक बार, जैसे एक बार ट्यूमर को निकाल दीजिए, जितना कष्ट होगा, एनेस्थेसिया, पोस्ट ऑपरेटिव चलेगा हमको, लेकिन निकाल लीजिए उसको एक बार, हम तैयार है उस दर्द को सहने के लिए। तो यहाँ पर जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे ना, तब फिर आपके मन के अंदर छुपे हुए कालिया पर भगवान नृत्य करेंगे, और आपके मन के अंदर छुपे हुए कालिया के अंदर का जो द्वेष रूपी विष है उसको मुक्त कर देंगे, उसको निकाल देंगे, है ना। ये भगवान की केवल शक्ति है, अपने साधना तपस्या दान धर्म पुण्य तीर्थ यात्रा का कोई इसमें हाथ नहीं है। आप ये दान धर्म पुण्य जब साधना करके केवल भगवान को ये कन्विंस कर सकते हैं कि यस माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि हम आप हमारे अंदर का द्विष जो है वो नष्ट कर दें, और भगवान फिर आपके प्रयास को देखकर हां कहकर उस विष को नष्ट कर सकते हैं। तो इतना सा बालक है समझो, और ऊपर ऐसे कपड़ा टांगने का खूंटी लगाए हैं, तो बार बार बच्चा जंप कर रहे हैं, उसकी जंप वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो पिताजी क्या करते हैं, बेचारा बच्चा कोशिश कर रहा है ना, उसको तो नामुमकिन नहीं है, तो उससे हाथ से शर्ट लेंगे, आराम से लगा देंगे खूंटी पे, तो बच्चा क्या कर रहा है, जंप मार मार के पिताजी को कन्विंस कर रहा है कि पापा अभी आप लगा दो उसको। पापा आराम से आते हैं, उससे हाथ से शर्ट लेते हैं, लटका देते हैं। उसी तरह से हमारी साधना तब जब तब तपस्या तीर्थ यात्रा सब क्या है, हमारी एक छलांग है, वो छलांग लगा रहे हैं, भगवान 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 कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो हमारे सिंसियर प्रयास, सिंसियर हमारी जो जंप है उसको देखकर भगवान प्रभावित होते हैं और तय करते हैं चलो इसको बचा लो, तो फिर वो बचा देते हैं। इसको कृपा कहते हैं, परिश्रम का फल नहीं है, ये केवल कृपा है। हमारा परिश्रम कहीं भी उनके कार्य के पास तक नहीं पहुंचता है, क्षमता के स्तर पर, देयर इज नो पोटेंसी इन द एफर्ट, हमारे प्रयास में उतनी शक्ति नहीं है कि भाई वो प्रयास से ही हम जीत जाएं, नहीं, प्रयास केवल भगवान को कन्विंस करता है कि इसको सहारा देना चाहिए, फिर भगवान ही सब काम कर लेते हैं। काम का भी ऐसा ही बताया ना आपको सुबह, ये काम वासना को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, भगवान ने चाहा तो उसको दूर रख सकते हैं आपसे, जैसे आप भगवान भावना को भूल गए, वापस काम आपके ऊपर चिपक जाएगा, सब खड़े हैं उधर, देख रहे जप कर रहा है, जप कर रहा है, तो दूर भगा जा रहा है हमको। जब भगवान को बोला जाएगा तुरंत उस पर हावी हो जाएंगे सब लोग, काम क्रोध द्वेष आदि विकार। तो ये जगह जो प्रार्थना करने की जगह है, यहाँ पर बड़े प्रेम से भगवान ने बड़ी करुणा से कालिया को विष मुक्त किया था, द्वेष मुक्त किया था। तो यहाँ पर प्रार्थना करने से आप हमको उम्मीद है कि हम भी कभी दिन एक दिन भगवान के द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, कि कैसे हमारे अंदर भक्त होने के बावजूद भी भगवान के लिए द्वेष है। मैं मेरी कहानी बताता हूँ। अगर मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन बनाए बिना अगर भगवान के राजभोग सेवा में चली गई, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? मेरी सेवा छोड़कर मंदिर में भगवान की सेवा करने क्यों गई? तो मेरी सेवा करनी चाहिए। तो फिर होशियार पत्नियां क्या करती है, सारा घर में लंच वंच बना के पूरा तैयार रख के फिर भगवान की सेवा में जाती है, ताकि घर में संतुष्ट रहेगा तो उधर कोई क्रोध वोध का काम नहीं होगा। लेकिन वो क्रोध क्यों आ रहा है? अरे मेरे को चावल भी नहीं बनाया घर पे, और मंदिर में जाकर 50 व्यंजन भगवान राजभोग में बना रही है, वो जो से मैसेज भेज रही है कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, आज मैं 15 आइटम बनाए, और मैं काम से घर पे आ रहा हूँ तो दाल भी नहीं है और चावल भी नहीं है। ये कैसी सेवा है भगवान की? वो क्या है, वो द्वेष ही बोल रहा है कि मुझे, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरी सेवा छोड़कर उधर काले की सेवा करने क्यों जा रही हो? यही भाव है वो। जब हमारा भोग में बाधा आती है और वो भी भगवान की सेवा की वजह से हमारे भोग में बाधा आती है, तुरंत हमारा दिल तिलमिला उठता है, वाई ही, वाई नॉट मी, फर्स्ट मी देन ही, ऐसे दिल बोलता है। तो यही द्वेष है। हाँ, हम भक्त हैं लेकिन फिर भी अभी तक वो देश है ना, वो छुप छुप के हम पर वार कर रहा है। इसलिए उसको पहचान कर भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे भोग के लिए नहीं है, हमारी पत्नी आपके अंश है, आपकी सेवा के लिए है। और जब वो आपकी सेवा करती है हमें जरा दुर्लक्ष करते हुए, तो भी हमको आनंद लगना चाहिए कि हमारी पत्नी भगवान की सेवा में है। कुछ दिन कैंटीन में खा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वहाँ से फ़ोन करके किसी को बोल देंगे, लेकिन करने दो भगवान की सेवा। अगर वो करेगी सेवा जैसे कालिया को उसने पत्नियों ने बचाया, वैसे वो भी हमको एक दिन बचाएगी। जैसे ब्राह्मण की पत्नियों ने ब्राह्मणों को बचाया कि नहीं, कितनी श्रेष्ठ पत्नियां थी उनकी। लेकिन ब्राह्मण तो अपने ही वेदों में रहे मस्त, लेकिन पत्नियां तो भक्ति भगवान की प्राप्त कर चुकी, प्रेम प्राप्त कर चुकी है ना। तो ये सब जो द्वेष का कारण है, इसलिए हम अपने आप को स्वामी मानते हैं और भगवान का स्थान लेना चाहते हैं, और जो भगवान को भोग मिल रहे हैं वो अपने को मिलना चाहते हैं। यहाँ तक कि गुरु की सेवा में भी गई पत्नी हमारी, हमारी सेवा छोड़कर हमारे को खाना ना बनाकर अगर गुरु जी को खाना बनाने के लिए गई, तो भी दिल तिलमिला उठता है, और बोलते फोन करके फिर जो भी वो बचा हुआ ले आओ घर पे, मेरा लंच में खाना चाहता हूँ मैं। क्या अंदर भाव है कि अच्छे अच्छे इतने व्यंजन बनाए ना, घर में नहीं बनाती हो, सारे बचा के लेके आओ इधर और मुझे खिलाओ। दिस इज एनवी। बाहर से बता रहे हम गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, सारा जीवन उनकी सेवा में है, सारा जीवन समर्पित है, लेकिन जरा सी हमारी पत्नी उनकी सेवा में गई, हमारी सेवा छोड़कर, तो दिल ऐसा कांपता है हमारा। तो ये प्रूफ है उसका कि भक्त होने पर भी द्वेष कैसे हमारे घर में बैठा हुआ है, अंदर जाके बैठा हुआ है। तो एक बात है उसको समझना कि ये द्वेष है, और दूसरी बात है प्रार्थना करना कि भगवान मुक्त कर दो, तभी हो सकता है। नम्रता के बिना नहीं हो सकता है, गर्व से द्वेष का हरण नहीं हो सकता है, नम्रता होगी तो गर्व का हरण हो सकता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि हमने दीक्षा लिया है, नाम करते हैं हम, नाम प्राप्त कर चुके हैं, सेवा में है, वृंदावन में रहते हैं, मतलब द्वेष से मुक्त हो गए। नहीं, जब तक अंदर जड़ से हमारा द्वेष निकल नहीं जाएगा और पूरी तरह भगवान की जो भी योजना है उसको स्वीकार नहीं करेंगे नम्र भाव से, तब तक वे द्वेष नष्ट नहीं हो सकता है, और द्वेष केवल भगवान ही निकाल सकते हैं। इसलिए आइए बड़े नम्र भाव से रो रो कर यहाँ पर पुकारे भगवान को, क्योंकि वो हमें दोष से मुक्त करें। कितना भी हमने प्रवचन कर लिया, कितना भी शास्त्र पढ़ लिया, कितनी भी कथाएं सुन ली, कितनी कथाएं बोली, हाँ कितने साक्षात्कार हुए, लेकिन ये द्वेष नष्ट हुए बिना प्रेम भक्ति का उदय नहीं हो सकता है। प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात है, अभी बहुत दूर की बात है। ये अहंकार और द्वेष से खेलना कोई खेल की बात नहीं है, अभी तो बहुत दूर है मंजिल हमारी। तो नम्र होकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान सबसे मुक्त करा देंगे। अहम रखेंगे तो मुक्त नहीं हो सकते। नम्र होकर गिड़गिड़ाएंगे तो सारे भयंकर भयंकर दोष भी जो है वो सब एक साथ नष्ट भगवान कर सकते हैं। एक कृतज्ञता और एक नम्रता, ये दो गुण अगर हमारे अंदर हम पैदा करते हैं तो सारे भयंकर जो दुर्गुण है वो भगवान नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दो छोड़कर बाकी सब अपने अच्छे अच्छे गुण पैदा किए कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक नम्रता और कृतज्ञता नहीं होती है पैदा, थैंक यू नहीं होता है हृदय में, तब तक सब हमारा परिश्रम बेकार है। इसलिए इस दिव्य स्थली पर कदम के वृक्ष के तले आप बैठे हो, यहाँ पर भगवान ने सुंदर लीला किया है, वहाँ पर आप कालियामर्दन कृष्ण भगवान को प्रार्थना करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आज की आगे की कथा भी है, भगवान जब बहुत देर जमुना जी के पानी में रहे तो जब कालिया का लीला समाप्त हो गया, कालिया चला गया, पानी शुद्ध हो गया, सब माता पिता शांत हो गए, आनंदी हो गए, तो भगवान को वो ठंड लगने लगी। बहुत देर जल में थे ना वो, तो वो ना यहाँ से थोड़ी दूर एक टील है, टील यानी कि हिलॉक टेकड़ी, उस पर चढ़ के जाके बैठ गए। और वहाँ पर जब बैठे बालक कृष्ण ठंडी में, तो वो 12 सूर्य वहाँ पर आए और उन्होंने उनको हीट दिया, और ऐसा हीट दिया कि वो गर्म भी उष्ण भी हो गए और उनके शरीर से दिव्य स्वेद भी निर्माण हुआ। वो स्वेद जो है वो पहाड़ से नीचे उतर के एक सरोवर बना, उसका उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर। प्रस्कंदन यानी प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, पसीना आने की जो क्रिया है उसको प्रस्कंदन कहते हैं। तो वो प्रस्कंदन सरोवर आज नहीं रहा, जब हम 30 साल पहले यहाँ पर आए थे वो था यहाँ पर, लेकिन वो कालांतर में नष्ट हो गया, उसी टील के नीचे हैं। और उस जगह जो है जहाँ पर भगवान बैठे थे उसका नाम है द्वादश आदित्य टील, 12 सूर्य जहाँ पर आकर भगवान को उष्णता दिया उस जगह को कहते हैं द्वादश आदित्य टील। तो उसी पहाड़ पर हमारे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को लेकर आए थे, और मदन मोहन जी ने उसी पहाड़ पर अपने मुरली से प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर सनातन गोस्वामी के लिए पहाड़ के पत्थर के अंदर मीठे पानी का कुआं बनाया था, जिसका नाम है वेणुकूप। वो अभी भी उस टील पर है, उस टील पर अभी भी वो वेणुकूप है मीठा जल का, बैठने की जगह भगवान की है द्वादश आदित्य टील। और उसी टील पर सनातन गोस्वामी के इच्छा के अनुसार मदन मोहन जी का भव्य मंदिर सबसे पहले वृंदावन में बनाया गया। जब वृंदावन का जीर्णोद्धार किया गया उस समय पहला मंदिर मदन मोहन जी का बना, जो इस पहाड़ पर है, और सनातन गोस्वामी उनके आचार्य हैं, उनकी समाधि भी उस पहाड़ के नीचे एक जगह पर बनाई गई है। तो संक्षेप में मदन मोहन जी संबंध आचार्य, संबंध भगवान है, संबंध अधिदेवता है, उनके चरणों की कृपा से हम भगवान से संबंध इस्टैब्लिश प्रस्थापित कर सकते हैं। और उनके आचार्य हैं संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी, जिनकी कृपा से ये संबंध ज्ञान जो है वो प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उनको वाराणसी में 2 महीने तक शिक्षा दिया गंगा जी किनारे, और वो संबंध ज्ञान 2 महीने तक उनको पढ़ाया, और वो उन्होंने अलग अलग शास्त्रों के रूप में लिखा, और उनकी कृपा से हम जैसे भटके हुए जीवों को जो माया में फंसे हुए हैं उनको भगवान का कनेक्शन प्राप्त होता है। और फिर गोविंद जी हमको, जिनका संबंध हो गया उनको सेवा देते हैं, और जिनको सेवा मिली है उनको फिर सेवा में परिपूर्णता गोपीनाथ जी देते हैं। ऐसा ये संबंध अभिदेव अभिदेय और प्रयोजन का सिद्धांत है। तो जयपुर की यात्रा में हमने पूरे 5-6 दिन संबंध अभिदेय और प्रयोजन इन विषय पर विस्तार में चर्चा किया है। तो किसी को वो चर्चा सुनना है तो वो लेक्चर सुन सकते हैं। ये 3 सिद्धांत जो है संबंध अभिदेय और प्रयोजन, ये हमारे भक्ति के जीवन के मूल सिद्धांत हैं। इनको समझे बिना आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो ये मदन मोहन जी जो है वो स्वयं प्रकट हैं, लेकिन सबसे पहले मदन मोहन जी का विग्रह वज्रनाभ ने बनाया था। वज्रनाभ जो भगवान के प्रपौत्र हैं, अनिरुद्ध के पुत्र हैं, उन्होंने बनाया था। उत्तरा को दिखाया था तो उत्तरा ने कहा था कि ये इनके चरण कमल जो है वो भगवान के जैसे ही हैं, तो मदन मोहन जी के नाम से उनको स्थापित किया गया। तो ये मदन मोहन जी कालांतर में लुप्त हो गए थे, वज्रनाभ द्वारा प्रस्थापित होने के बाद में काल के प्रभाव से फिर वो लुप्त हो गए थे। तो अद्वैत आचार्य जब वृंदावन में भजन करने के लिए आए थे तो वो एक वट वृक्ष के सामने बैठकर भजन करते थे, तो उसको अद्वैत वट नाम से जानते हैं उस वट वृक्ष को, वो आज भी वहां पर है। तो अद्वैत वट के नीचे बैठकर अद्वैत आचार्य जब एकांत भजन कर रहे थे तो उनके आंखों के सामने मदन गोपाल जी ऐसे प्रकट हो गए, स्वयं स्फूर्त जहां पर भी थे वहां से अपने आप प्रकट हो गए। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए। उस समय उन्होंने ये विग्रह जो है मदन गोपाल जी के जो भजन कर रहे थे वो पुरुषोत्तम चौबे नाम के पंडा को दे दिए, चतुर्वेदी को, हरे कृष्णा, और वो वहाँ पर उनकी सेवा करते थे। तो सनातन गोस्वामी जब वहाँ पर पहुँचे तभी वो पुरुषोत्तम चौबे की जो पत्नी थी वो डंडा हाथ लेकर डांट डांट कर भगवान को भोग लगा रही थी। तो सनातन जी ने कहा कि अरे मैया कैसी भगवान की सेवा कर रहे हो, ऐसी सेवा नहीं करते, मंत्रों से और अच्छे प्रेम से की जाती है, तुम डंडे से डांट डांट के उसको भोग लगा रही हो, इतना देर खेलते रहते हो जमुना जी के, समय पर घर पर नहीं आते हो, अभी चुपचाप खा ले ऐसा करके डंडा दिखा के भोग लगा रही। तो बड़ा अजीब लगा उनको, तो मैया को बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने, तो मैया भी होश में आ गए, बोले मैं तो क्या डंडा दे के भोग लगा रही हूँ, महाराज जी क्या अलग बता रहे हैं। तो एकदम ऐश्वर्य भाव में आ गई, वो आदर भाव में आ गई, प्रार्थना करने लगी, तो भगवान का सारा मजा समाप्त हो गया। उनको डंडा दिखा दिखा के खाने में जो आनंद आ रहा था तो वो खत्म हो गया पूरा। तो सपनों में आए सनातन जी महाराज के, अरे महाराज आपने तो पूरा रंग का भंगी कर दिया, इतने मजे ले रहा था मैं उनके घर पे, वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रहा था, तुम आए बड़ा शास्त्र का ज्ञान दिया, बेचारी मेरी माँ जो है अभी पूरा श्लोक गा रही है मेरे लिए, डंडा वंडा गायब हो गया, अब मुझे वहां पर कोई रस नहीं आ रहा है, अभी तू ही मुझे ले चल, कल जा उधर और भिक्षा में लेके चलना मुझे। वो मैया को भी स्वप्न दिया कि मैया अभी मुझे कल जो साधु आएगा ना वो भिक्षा मांगेगा तो मुझे दान कर देना। तो मैया रोने लगी फूट फूट करके, डंडा दिखाया इसलिए अभी जाने को बोल रहे हैं, डंडा दिखा के परेशान हो गया बालक, दुखी हो गया, अभी क्या करें, उनके आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। तो दे दिया दान सनातन जी को, सनातन जी उनको यहाँ लेकर आए और उस पहाड़ पर उनका भजन पूजन किया उन्होंने। फिर जाकर वो बोलते थे कि अरे मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप आ रहे हो लेकिन आपको मैं क्या खिला पाऊंगा, मैं तो भिक्षा खा के बाटी खाता हूँ, जमुना जल में वो आटा मिलाता हूँ, गोले बनाता हूँ और भूनता हूँ, ऐसे खा लेता हूँ, तो जो भी खाओगे मुझे भोग लगा देना मैं खा लूँगा। देखो आगे जाकर मिठाई वगैरह मांगना नहीं है, मेरे पास मिठाई का इंतजाम नहीं है, नहीं नहीं जो मांगेगा वो देंगे मैं, जो मतलब जो मुझे मिलेगा वही मैं आपको बगाऊंगा और मैं भी खाऊंगा उसको, ऐसे भगवान बोलते हैं। एक दिन बोलते हैं कि अरे थोड़ा नमक तो डाला करो, कम से कम नमक डाला करो, आटा तो लेते हो जमुना जी में मिलाते हो, गोली बना देते हो, भूनते हो, लेकिन नमक के बिना भी खा खा के परेशान हो गया मैं। देखो मैंने कहा था ना आपको ये मेरे पास कुछ नहीं है, खाना है तो खाओ, ये तो मत खाओ। तो भगवान लीला करते हैं, जिस दिन ही हुआ ना उसी दिन एक जहाज आता है यहां पर जमुना जी में अटक जाता है, वो रामचंद्र कपूर पंजाब से मुल्तान से आ रहे हैं और बहुत सारा सामान है उसके अंदर, कुछ नमक की थैलियां भी है, पूरा जहाज ऐसा जमुना जी में गोल गोल घूम के फंस जाता है तूफान में। तो फिर वो कैसे भी करके कूद के आ जाता है किनारे में, रोता है अरे पुकारो बचाओ बचाओ मेरा जहाज डूब रहा है जहाज डूब रहा है। तो वहां पर मदन मोहन जी प्रत्यक्ष रूप में ग्वाल बालों के साथ जमुना किनारे खेल रहे हैं, प्रत्यक्ष मूर्ति अलग है वो अपने अलग खेल रहे हैं। तो उनको भी पूछते हैं अरे बचाओ बचाओ, तो मदन मोहन जी खुद बोलते हैं कि पहाड़ पर ना एक साधु बैठे हैं, वो बड़े महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा, उनकी कृपा से आपका जहाज बच सकता है। तो भाग भाग के बेचारा ऊपर चला गया साधु को मिलने के लिए। उतने में भगवान ने क्या किया, अपना फेटा उठाया ऐसे गोल गोल घुमाया, पूरा वायु को नियंत्रित किया और ऐसा खींच लिया उसको, पूरा जहाज जो है जमुना किनारे आ गया। उधर ऊपर तब तक वो ऊपर पहुंच गया तो बाबा क्या बोलते हैं, मदन मोहन जी आपको बचा सकते हैं। उसको बेचारे को पता नहीं कौन बचाया लेकिन जहाज तो पहुंच गया। तो जब वो दंडवत कर रहा था तो उसके जेब में कुछ नमक था, वो उसकी पूड़ी गिर गई, उसी को सनातन गोस्वामी ने यूज करके भगवान को भोग लगाया उस दिन। और वो जब जहाज बचकर किनारे पे आते हुए देखा तो बड़ा प्रभावित हो गया वो, तो महाराज जी आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, ये सब आपका ही है, ये तो सब डूबने वाला था, मैं भी डूबने वाला था, अभी प्राप्त हुआ है दोबारा तो सब आपका है, आप सब ले लो। तो महाराज जी कहते हम तो विरक्त साधु हैं, हमको क्या चाहिए, आपको कुछ करना है तो मदन मोहन जी के लिए करिए। तो वो जाकर पूरा बेच के बहुत धन कमा के आता है, लेकिन उसको पूरी अनुभूति होती है कि ये सब में इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, तो गया था सब कुछ। तो धन लेके आता है, दोबारा गिड़गिड़ाता है कि महाराज जी को सेवा में लीजिए, तो कहते नहीं मदन मोहन जी के लिए मंदिर बना दो आप। तो एक कृष्णदास नाम के अपने शिष्य को मदन मोहन जी की सेवा सौंप कर सनातन जी चले गए नंदगांव की ओर। नंदगांव में और गोवर्धन में उनकी भजन कुटी है, इसीलिए जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तब वो वहां पर चले गए थे। चक्रेश्वर महादेव के पास रुके थे, उसके आगे जाकर पावन सरोवर किनारे भी उनका भजन कुटी है। वो 1680 में ये मंदिर तैयार हुआ पूरा, सबसे पहले 1580 में। तो ये ऐसा ये मंदिर आपके सेवा में उपलब्ध है। मदन मोहन जी बड़ी कृपा करते हैं, भगवान का संबंध देते हैं। तो अभी इस कथा के उपरांत आप बस में बैठकर फिर वो वहाँ जाएंगे, आप मदन मोहन जी के मंदिर के सामने उतरेंगे